मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 4 जुलाई 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं दीपक नामदास, आपका गांव है पटाकमारी जिला कूच बिहार पश्चिम बंगाल से, और रोहन दीपक सूर्यवंशी, आपका गांव है सिलोरी जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आप सबने आज के न्यूज में ये सुना कि किस तरीके से भारत सरकार ने 3 एयरपोर्ट को निजी क्षेत्रों को सौंपने का निर्णय लिया, मतलब उसका जो रख रखाव है वो निजी क्षेत्र के लोग करेंगे। इसे हम PPP मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक इस मायने में कि वो एयरपोर्ट सरकार ने बनाया है, सरकार का ही उस पर स्वामित्व है, और प्राइवेट किस मायने में कि उसका रख रखाव देखरेख मेंटेनेंस वो सारा काम कोई प्राइवेट कंपनी करेगी। यानी कि उस एयरपोर्ट के बदले में जो कंपनी साल भर में सरकार को सबसे ज्यादा पैसा देने का वायदा करेगी, बोली लगाएगी, उसे वह काम सौंप दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद भारत में PPP मॉडल बहुत तेजी से विकसित हुआ है और इसके बहुत दूसरे मॉडल भी हैं। इस PPP मॉडल के और भी दूसरे रूप हैं, उनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो PPP मॉडल है, ये जब हमारे खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सन 2017 के क्वेश्चन पेपर में, आप थर्ड पेपर में आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है सीधे सीधे, और क्वेश्चन है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तों के विकास का परीक्षण कीजिए। यहां संयुक्त उपक्रमों का क्या मतलब हो गया? सरकारी उपक्रम। तो यहां कौन सा सरकारी उपक्रम है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो 3 एयरपोर्ट हैं, बेहतर होगा कि आप अपने लिस्ट में इनके नाम जोड़ लें, क्योंकि इससे पहले भी दूसरे एयरपोर्ट भी दिए जा चुके हैं, तो नाम बताने की यहां जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूं। फ्रेंड्स, ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर के पूरी दुनिया थोड़ी सी चिंतित हो गई है, और ईरान ने जो परमाणु समझौता किया था उसकी उसने सीधे सीधे उल्लंघन करने की घोषणा कर दी है। उसने साफ साफ कह दिया है कि वह 2015 में जो विश्व शक्तियों के साथ समझौता किया था उसे तोड़ रहा है, और अब कुछ ही दिनों में जो उसके ऊपर लिमिट है कि आप इतने ही यूरेनियम को संवर्धित कर सकते हैं, उसकी सीमा को वह पार कर जाएगा। मतलब वो ज्यादा यूरेनियम की प्रोसेसिंग करेगा और उतनी करेगा जितने की उसे जरूरत है। हालांकि ईरान ने साथ में यह भी कहा है कि वो जो यूरेनियम की प्रोसेसिंग करेगा उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण ही होगा, यानी कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसी बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा दुनिया का मुश्किल होता है, और खासकर ईरान के इस स्टेटमेंट को लेकर के पूरी दुनिया में एक अशांति का भाव पैदा हुआ है, थोड़ी सी खलबली सी है। और आप जानते हैं कि इससे पहले अमेरिका ने इसी मुद्दे को लेकर के ईरान पर दबाव डाला है और ईरान पर दूसरे तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, और उसी के नतीजे में भारत ने भी अब ईरान से पेट्रोलियम मंगाना बंद कर दिया है, जो भारत के लिए सच पूछे तो बहुत ही नुकसानदेह होगा। और कुछ लोगों को तो अब लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका ईरान पर अटैक कर दे और उस पूरे के पूरे गल्फ एरिया में गृह युद्ध की स्थिति या कह लीजिए युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। तो दुनिया के सामने यह एक खतरा मंडरा रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों, आपने न्यूज में सुना कि आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन यह बहुत बड़ा होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसकी चर्चा हम लोग इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद डेफिनेटली करेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। आज के करंट कंटेंट के तहत एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, भारतीय स्वास्थ्य जगत का रूपांतरण। जब आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि खासकर हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत अधिक कमी है, तो हम उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं इसके बारे में कुछ बहुत अच्छे उपाय उन्होंने सुझाए हैं। और आपको मालूम है कि सिविल सर्विस मेंस में आपसे हमेशा इस तरह के उपाय पूछे जाते हैं, आपके क्या विचार है इसके लिए, आप क्या उपाय करेंगे, तो उसमें वह लेख आपकी मदद करेगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने मुख्य विषय पर आऊं, मैं एक बात आप लोगों से स्पेशली कहना चाहूंगा। कल के दैनिक जागरण में और इससे पहले नेशनल एडिशन में, परसों के दैनिक जागरण में यूपीएससी पर मेरा एक लेख छपा है और आप लोगों में से बहुत से ने उसे पढ़ा भी होगा और कल के प्रेस क्लिपिंग्स में वह लेख मैंने प्रोवाइड भी किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लेख को लेकर के स्टूडेंट के मन में एक द्वंद्व की स्थिति बन गई है और उसका कारण यह है कि उन्होंने उस लेख को बहुत सही तरीके से ध्यान देकर पढ़ा नहीं है। मैंने उस लेख में कहीं भी ये बात नहीं कही है कि यूपीएससी हिंदी माध्यम वालों के साथ कोई भेदभाव करता है। मैं शुरू में भी कहता रहा हूं कि इस तरह का भेदभाव मार्किंग में किसी भी स्टेज की, चाहे वो प्री हो या मेन्स हो या इंटरव्यू है, उसमें नहीं हो सकती, उसकी कोई संभावना, कोई आशंका नहीं है। वहां जो मैंने प्रश्न उठाया है वो केवल इस बात को लेकर के, जो आशंका उठाई है कि भाई जो यूपीएससी है वह अब आंकड़ों के रूप में यह क्यों नहीं बता रहा है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, बस केवल ये, तो वो आंकड़ा दे क्यों नहीं रहा है। बस मैंने केवल ये प्रश्न उठाया है और दूसरा कोई भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहूंगा कि आप यूपीएससी की कार्यप्रणाली, कॉपी जांचने के तौर तरीके, इंटरव्यू, इसको लेकर के मन में बिल्कुल भी संदेह न पालें। वो सारी चीजें बहुत ही परफेक्ट तरीके से होती हैं। इसका जायजा लिया जा रहा है कि हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट क्यों पीछे रह जा रहे हैं और वो जो पीछे रह रहे हैं वो प्री से ही हो जा रहे हैं, यानी कि मेंस में आकर के उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, जबकि प्री में तो लैंग्वेज का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उसके भी रीजंस हैं, उन रीजंस को जानने समझने की कोशिश की जा रही है और वो जो डेटा मांगा गया है वो उस जो कोशिश हो रही है समझने की उसी का एक हिस्सा है। इसलिए इस बात को लेकर के आप लोग बिल्कुल निरुत्साहित न हो कि यूपीएससी में के माध्यम से आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, यूपीएससी आपके साथ कोई भेदभाव करती है। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे उस लेख को आप सब गलत तरीके से न लें। हाँ, इसके लिए जो किया जाना चाहिए, जो अगर कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही तो उसको कैसे पूरा किया जाए, उनके लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन आप सब अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसके स्तर को अच्छा बनाएं, उत्तर लिखने की शैली को तार्किक करें, अपनी भाषा को बेहतर करें। और इन सारी बातों को लेकर के YouTube पर बकायदे मैंने एक प्रोग्राम भी डाला हुआ है, उसे बार बार सुने, देखें, समझने की कोशिश करें और उसके अनुकूल अपने आप को ढालें। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूज में आपने सुना कि भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी बढ़ाया है और ये जो बढ़ोतरी है लगभग 3.5% से 5% के बीच की है। आप देखते हैं कि हमारे यहां जो महंगाई की दर भी है ना, ये 3.5% से 5% के बीच में वैरी करती रहती है, मतलब 2% से 4% के बीच में, तो उसी के आसपास ही सरकार ने अपना समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, हम इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे, कितना कितना बढ़ाया है उसके बारे में मैं बताने नहीं जा रहा हूं क्योंकि परीक्षा में वो पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर यानी 2018 के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर, तो उस थर्ड पेपर का तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा, स्ट्रेट क्वेश्चन है। आप देखिए, जिस तरह से कि कॉलेजेस में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन स्ट्रेट क्वेश्चन मिल जाते हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, How will MSP rescue the farmers from the low income trap? इसका मतलब है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे याद आ रहा है कि 2 साल पहले प्री में भी, या 1 साल पहले प्री में भी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक प्रश्न पूछा गया था और शायद कुछ इस तरह का था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिन वस्तुओं का निर्धारित किया जाता है तो निम्न में से कौन सी वस्तुएं उनमें हैं। तो उसमें बेसिकली कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई थी कि जिनको देखने के बाद ही आपको लगेगा कि इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या फिक्स करेगी सरकार। उसमें जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद अदरक, हल्दी, इस तरह की चीजें थी। तो स्वाभाविक है कि अदरक वगैरह बहुत ही सामान्य उत्पादन की चीजें नहीं है, तो इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में शायद नहीं आती होंगी। मैं अभी अंदाजे से बात कर रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन का आभास मेरे दिमाग में, एग्जैक्ट वह क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पक्का है कि प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, भले ही 2018 में इस पर क्यों ना पूछ लिया गया हो। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका मतलब है कि जो भी वस्तु है, यदि उस वस्तु की कीमत इससे कम हुई तो सरकार उस मूल्य का समर्थन करेगी, मतलब जो अपना एक बेंचमार्क बनाएगी उसके लिए सपोर्ट करेगी। उदाहरण के तौर पर आइए मैं सीधे आंकड़ों में समझाऊं कि मान लीजिए कि धान है और वह मार्केट में 900 रुपए क्विंटल बिक रहा है, 900 रुपए क्विंटल। सरकार को लगता है कि नहीं, जो धान है इसका मूल्य कम से कम 1,000 रुपए तो होना ही चाहिए। सरकार को क्यों लगता है कि कम से कम 1,000 रुपए होना चाहिए? वो इस रूप में लगता है कि सरकार में बकायदे एक आयोग है जिसे हम केंद्र कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस, CACP। ये सरकार को बकायदे बताती है कि किसी वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, और वो बताने से पहले बकायदे मार्केट का जायजा लेती है कि भाई किसी वस्तु, जैसे हम धान की बात कर रहे हैं, तो 1 क्विंटल धान के उत्पादन में कितनी लागत आएगी, बाजार में धान की मांग और पूर्ति की स्थिति क्या है, धान में जो पैदा करने में जो लगने वाली जो चीजें हैं उनकी कीमतों में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति क्या है, दूसरी जो वस्तुएं हैं उनके साथ इसका किस तरह का संबंध है, इन सभी का जायजा लेने के बाद वो सरकार से सिफारिश करती है, मान लीजिए कि धान का मूल्य 1,000 रुपए तो होना ही चाहिए क्योंकि इसकी लागत ही 900 रुपए आ रही है, तो किसानों को 10% का भी अगर आप फायदा देंगे तो 1,000 होना चाहिए। अब एक साथ धान पैदा हो गया, दुनिया भर का धान मंडियों में पहुंच गया, वहां खरीदने वाले व्यापारी देख रहे हैं कि किसान तो बेचेंगे और अगर हम मूल्य कम कर देंगे तब भी किसानों को ये धान बेचना मजबूरी है, तो वो कहेंगे कि भाई हम आपका धान 800 में खरीदेंगे या 900 रुपए में खरीदेंगे। अब किसान तो कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें बेचने की मजबूरी है। तो ऐसे में सरकार फिक्स कर देती है कि 1,000 रुपए, 1,000 रुपए धान का MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि 1,000 रुपए से। अब आप देखिए कि जो खरीदने वाले हैं उनके ऊपर इसकी बाध्यता नहीं है कि आप 1,000 रुपए से कम में अगर आप खरीदेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, जुर्माना लगेगा, नहीं। सरकार यहां करती यह है कि अगर बाजार में 900 रुपए में धान नहीं बिक रहा है तो सरकार कहेगी कि लाइए हम 1,000 रुपए में खरीदते हैं, सरकार उसे खरीदना शुरू कर देगी। तो जब सरकार 1,000 रुपए में धान खरीदना शुरू कर देगी तो सभी किसान सरकार के पास आकर के धान बेचना शुरू कर देंगे, तो जो राइस मिल है जिन्हें दो दूसरों को धान खरीदना था उनको धान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, झक मार करके वो कहेंगे कि भैया हम भी 1,000 रुपए में धान लेंगे, तो कुछ लोग उधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका क्या उद्देश्य हुआ कि अगर जो कृषि के उत्पादन के मूल्यों में गिरावट आ रही है, कृषि के मूल्यों में गिरावट आ रही, यानी कि धान की कीमत में यहां गिरावट आ रही है, तो यह इंश्योर करना कि किसानों को उसका न्यूनतम मूल्य तो मिल सके, ये इंश्योर करना होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। और देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हालत होगी, अगले साल किसान धान लगाना बंद कर देंगे, जब धान लगाना बंद कर देंगे तो फिर क्या स्थिति होगी, तो उस साइकिल में सोचिए तो लगेगा कि नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार को निश्चित किया ही करना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें मैंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बताई हैं। वक्त अब ज्यादा बताने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयारी करें। और न्यूज में ही एक लाइन मेंशन की हुई थी कि इसको जो फाइनल निर्णय इस पर जो लेता है वो है हमारी जो कैबिनेट कमेटी होती है, उस कैबिनेट में एक कमेटी होती है आर्थिक मामलों की समिति, वो इसके बारे में निर्णय लेती है। इस पर भी 3-4 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि गन्ने के मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अजय धाकड़ ग्वालियर मध्य प्रदेश से, शिवप्रिया रघुवंशी इंदौर मध्य प्रदेश से, निशा निमोरिया, रामधन मीना, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अंकुश सैनी और रवि कुमार दयालपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।